यीशु मसीह के नाम की जय। जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे साथ निकालें जो बहन भाई बाइबल मुकद्दस पढ़ सकते हैं, लेकर आए हैं लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 9 बाप हम 57 आयत से 62 आयत तक पढ़ेंगे, और आज दूसरे शख्स के बारे में सीखेंगे कि यीशु मसीह ने उसे क्या कहा। 57 आयत में यूं लिखा है, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहां कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लूमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि मैं पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आज हम देखेंगे 59 और 60 आयत को, दूसरे शख्स को, क्योंकि पहले शख्स ने चाहा कि यीशु, मैं तेरे पीछे चलूंगा, तू जहां कहीं जाए मैं तेरे पीछे आऊंगा। तो यीशु मसीह ने उससे बड़े ही सादा तरीके से जो सच बयान किया कि लूमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह भी नहीं, जो इस बात की तरफ इशारा था कि अगर तू मेरे पीछे आना चाहता है तो तुझे इस दुनिया की शानो शौकत और उन चीजों को जो तुझे रोकती हैं ना करना होगा। और कल हमने सीखा था इस बंदे के बारे में कि यीशु मसीह ने कहा कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता, लेकिन जब उस जैसा हो तो क्या होगा जी, अपने उस्ताद जैसा होगा। लूका 6 बाप उसकी 40वीं आयत पर हमने ये बात सीखी थी। आज 59 आयत में हम देखते हैं, फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। यहां पर यीशु मसीह इस दूसरे शागिर्द को क्या कहता है कि मेरे पीछे चल। इस आदमी को कहता है कि मैं तुझे चाहता हूं कि मेरे नक्शे कदम पर चल, जो मैं करता हूं, जो मेरा मकसद है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर कर। यहां पर हम जो तब्दीली देखते हैं, पहले बंदे ने कहा कि मैं तेरे पीछे जहां कहीं तू जाएगा चलूंगा। उसके दिल की ये ख्वाहिश है कि यीशु मसीह जहां कहीं भी जाए उसके पीछे चले, लेकिन हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं कि उसने क्या किया। लेकिन यीशु ने जो उसे जवाब दिया वो बड़ा ही क्या है जी, रफ, या जिसे कह सकते हैं जी, बड़ा ही सख्त जवाब दिया कि मेरे पीछे चलने के लिए जो तू अरादा कर रहा है उसके लिए क्या करना होगा, उसे अमली तौर पर पूरा करने के लिए इस दुनिया की शानो शौकत को खैरबाद कहना होगा। क्योंकि हमें मत्ती की इंजील में जिक्र मिलता है, यीशु मसीह ने क्या कहा है कि पहले तुम मेरी बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। दूसरे बंदे को जब हम देखते हैं तो 59 आयत में लिखा है, फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। यीशु मसीह दावत देता है हर एक को कि वो उसके पीछे चले। यीशु मसीह के पीछे चलने से मुराद क्या है, यानी कि उसके कहे पर अमल करना, उसकी तरह जिंदगी बसर करना। और यीशु मसीह की जिंदगी बसर करने का, इस जमीन पर आने का मकसद क्या था, जब हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं शागिर्द 4 बाप में जब कुएं का वाक्या पढ़ते हैं तो यीशु मसीह वहां पर बैठा है, शागिर्द रोटी लेकर खाने पीने को आते हैं, तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को क्या कहता है जब वो उससे कहते हैं कि यीशु कुछ खा ले, उसने क्या कहा, मेरी रोटी ये है कि अपने भेजने वाले की क्या करूं जी, मर्जी को पूरा करूं। हर शागिर्द का ये रवैया होना चाहिए कि जब हम यीशु मसीह के पीछे चलें तो दुनियावी चीजों को, दुनियावी ख्वाहिशों को रुकावट बनने ना दें। यहां पर यीशु मसीह दूसरे बंदे को दावत देता है کہ میرے پیچھے چل۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو کیا کروں؟ دفن کروں۔ اس بات سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے جی؟ یہودی ہے، اور وہ یہودی ہوتے ہوئے اس بات کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری کو ادا کرنا ضرور ہے۔ یہودیوں میں ہر باپ کی یہ خواہش تھی کہ جب وہ مرے تو اس کا بیٹا اس کی کیا کرے جی؟ کفن دفن کا کیا کرے؟ انتظام کرے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف مصر میں تھا، خدا نے اسے سرفرازی دی، جب خدا نے اسے سربلند کیا تو اس کے 11 کے 11 بھائی اور اس کا باپ وہاں پر آتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے باپ، یوسف کے باپ، یعقوب کے مرنے سے پہلے یعقوب کی کیا درخواست تھی کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری دن نزدیک ہے، جب میں مر جاؤں تو کیا کرنا، میری ہڈیوں کو کیا کرنا، جا کر اپنے ملک میں دفن کرنا۔ سو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، یہ یہودی ہے، اور ان یہودی احکام کو اور رسومات کو پورا کرنے کی اپنے دل میں خواہش رکھتا ہے، اور یسو کو کہتا ہے جی، یسو مجھے پہلے اجازت دے کہ جا کر اپنا حق ادا کروں۔ ہر یہودی بیٹے کی اور ہر یہودی باپ کی یہ خواہش تھی، باپ کی یہ خواہش تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بیٹے کو دفن کرے، اس کی یہ خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کا کیا کرے جی؟ کفن دفن کا انتظام کرے۔ کسی بھی بیٹے کی یہ خواہش نہیں تھی کہ وہ پہلے مر جائے، بلکہ یہ خواہش تھی کہ اس کا باپ کیا کرے جی؟ اس کو وہ دفن کفن کرنے کا انتظام کرے۔ سو اس آیت سے ہمیں پتا چلتا ہے دوسرے حصہ میں کہ یہ بندہ یہودی اور مذہب پرست ہے اور حکموں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو پرانے عہد نامہ میں ہمیں گنتی کی کتاب میں 6:6 اور 7 آیت میں کیا کیا گیا تھا جی؟ حکم دیا گیا تھا موسیٰ کی طرف سے کہ کیا کرنا چاہیے، کہ جب کوئی خدا کے حضور نظریں گزارنے کے لیے، جس نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہو، اگر وہ خدا کے ہیکل میں مذبح پر نظریں گزران رہا ہو اور اسے خبر مل جائے کہ اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا ہے، جیسے لکھا ہے، ان تمام ایام میں جب وہ خداوند کا نذیر ہو، خدا کا نذیر ہونے سے مراد یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ خدا کے حضور وہ اپنی اس منت کو، اس نظر کو پورا کرے، تو آگے کیا لکھا ہے، نذیر ہو وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے، وہ کسی لاش کے نزدیک نہ جائے۔ یہاں پر یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، یسو سے کہتا ہے کہ تُو میرے پیچھے چل، میں تجھے چنتا ہوں، میں تجھے بلاتا ہوں، میں تجھے علیحدہ کرتا ہوں، مخصوص کرتا ہوں کہ میرے پیچھے آ، اس زندگی کو، اس مقصد کو جو میں نے تیرے لیے رکھا ہے اسے پورا کر۔ لیکن یہ بندہ کیا کہتا ہے، مجھے پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کرنے دے۔ اس کے پیچھے دو سوچیں پائی جاتی ہیں جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلی بات، ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ مر گیا ہے اور وہ جا کر اسے دفن کرنا چاہتا ہے، اور دوسری بات، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں تب تک تیرے پیچھے نہیں آ سکتا، اپنا گھر بار سارا کچھ نہیں چھوڑ سکتا جب تک اپنے باپ کو دفن نہ کر دوں، جب تک وہ وفات پا نہ جائے۔ سو لکھا ہے، کسی لاش کے نزدیک نہ جانا، وہ اپنے باپ یا ماں یا بہن، بھائی یا بہن کی خاطر جب وہ مرے اپنے آپ کو نجست نہ کرے، کیونکہ اس کی نظرات جو خدا کے لیے ہے اس کے سر پر ہیں۔ جب یہودیوں میں یہ بات کا عہد لے لیا جاتا تھا کہ وہ خدا کے حضور جا کر اپنی نظروں کو، منتوں کو اور اپنی اس ڈیوٹی کو یا ذمہ داری کو پورا کرے گا، تو اس ڈیوٹی کے دوران اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو ان کو منع کیا گیا تھا کہ تم کسی مردے کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ مردے کو ہاتھ لگانے سے وہ ناپاک ہو جاتے تھے۔ تو یہاں پر یسوع مسیح اس جوان کو کیا کہتا ہے، تو میرے پیچھے چل، तू मेरा नजीर बन, तू मेरा मखसूस किया हुआ बन, और क्या कर, पैगाम क्या है कि खुदा की बादशाही की मनादी कर। लेकिन ये बंदा आगे से इजहार और दरखास्त क्या करता है, उसने कहा ऐ खुदावन मुझे इजाजत दे के पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। दो बातें इसमें पाई जाती है, अभी उसका या तो बाप मर चुका है जिसके लिए वो चाह रहा है कि पहले जाकर वो यहूदी होते हुए उस जिम्मेदारी को पूरा करे, या दूसरी इसमें जो बात पाई जाती है कि वो कह रहा है कि यसु मैं तब तक तेरे पीछे नहीं चलूंगा जब तक मेरा बाप मर नहीं जाता, तब मैं उस जिम्मेदारी से फारग होऊंगा और मैं फिर तेरे पीछे आऊंगा। सो यसु मसीह ने इस जवान के जवाब पर क्या कहा, 60 आयत में लिखा है, उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। सो हम इसमें से जो सच सीखेंगे वो ये है कि बाइबल मुकद्दस की जब हम सच्चाइयों पर गौर करते हैं तो जो कोई बंदा एक दफा पैदा होता है वो दो दफा मरता है। एक दफा पैदा होने से मुराद यानी कि जिस्मानी पदेश, वो लोग हैं जिन्होंने जिस्मानी पदेश हासिल की है और वो दो मौतों का सामना करते हैं। दो मौतें किनको कहा गया है, यानी कि जिस्मानी मौत और रूहानी मौत। ये उन लोगों की तस्वीर है जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, सिर्फ वो जिस्मानी तौर पर पैदा हुए, उन्होंने पैगाम सुना, उन्होंने खुदावंद का कलाम सुना, खुशखबरी को कबूल नहीं किया। तो उनको क्या कहा गया है कि जो कोई एक दफा पैदा होता है वो कितनी दफा मरता है जी, दो दफा। अगर कोई जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है तो रूहानी तबार से वो कितनी मौतें मरेगा जी, दो। जिस्मानी मौत यानी कि जिस्म का फना हो जाना, और रूहानी मौत क्योंकि उसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ। इसलिए जो दूसरी बात क्या है, जो शख्स दो दफा पैदा होता है वो कितनी दफा मरेगा, एक दफा। यानी कि जिस्मानी तौर पर पैदा होना और फिर रूहानी तौर पर पैदा होना। हमको यूहन्ना की इंजील 3 बाब में यहूदियों के सरदार का, जिसे नीकुदीमस कहा गया है, जिक्र मिलता है। वो जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ था और रूहानी तौर पर पैदा होने की ख्वाहिश करता है कि यीशु मैं क्या करूं कि खुदा की बादशाही का वारिस हूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तुझे नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं क्या दोबारा अपनी मां के पेट में जाऊं और जन्म लूं। यीशु मसीह दरअसल वहां पर उसे क्या बता रहा था कि तू जो जिस्मानी तौर पर पैदा हुआ है, तुझे रूहानी तौर पर पैदा होने की जरूरत है। सो दूसरा बंदा कौन है, जो दो दफा पैदा होता है वो एक दफा मरता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा खा वो मर भी जाए तो भी क्या होगा जी, जिंदा रहेगा। सो बाइबल मुकद्दस में दो दफा पैदा होने से मुराद क्या है, जिस्मानी पदेश, रूहानी पदेश, और उसके बाद हर ईमानदार को क्या आएगी जी, जिस्मानी मौत आएगी। जिस्मानी मौत आएगी, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, और हम बहुत से लोगों को मरता देखेंगे। और ये क्या है जी, बरहक और सच है, क्योंकि जिस्मानी मौत के बाद फिर रूहानी जिंदगी शुरू होती है। सो यहां पर यीशु मसीह ने इस नौजवान को जवाब क्या दिया, उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, कि जो लोग रूहानी तौर पर मुर्दे हैं उनको अपने जिस्मानी मुर्दों को दफन करने दे। लेकिन यीशु ने उससे क्या कहा, लेकिन तू जाकर क्या कर, खुदा की बादशाही की खबर फैला, खुदा की बादशाही की खबर फैला। सो यहां पर यीशु इसको बुलाता है, वो उसके सामने क्या करता है, मुझे इजाजत दे कि मैं पहले जाकर क्या करूं जी, अपने वालिद को, अपने बाप को दफन करूं, ताकि अपनी उस खानदानी और जिस्मानी ड्यूटी को पूरा कर सकूं। लेकिन यीशु मसीह ने उसे कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। इससे मुराद क्या है कि जो लोग जिस रूहानी तौर पर मुर्दे हैं वो अपने जिस्मानी मुर्दों को दफन करेंगे जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए, वो उनको जो उनके रिश्तेदार हैं जो नहीं पैदा हुए रूहानी तौर पर, वो क्या है जी, मौत का मजा चखेंगे। सो आज इस दूसरे बंदे से हम क्या सीखते हैं, जो यहूदी है, जो मजहब परस्त है, जो अपनी ड्यूटी को पूरा करना चाहता है, जो अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता है, लेकिन यीशु मसीह उसे क्या कहता है कि जिस्मानी और दुनियावी जिम्मेदारी को पूरा करने से पहले तुझे क्या करना होगा, अपनी खुदी का इनकार करना होगा। जिसके लिए हम जब देखते हैं, मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील उसका 16 बाप, उसकी जब हम 24वीं आयत को देखते हैं, तो यीशु मसीह दरअसल हमें क्या सिखाना चाहता है। उस वक्त यीशु ने अपने शिगिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे। अपनी खुदी के इनकार में क्या आता है जी, अपनी खुदी के इनकार में अपनी ख्वाहिशों को ना कहना, दुनिया की ख्वाहिशों में मसरूफ नहीं होना। जैसे कल हमने सीखा था कि हम इस दुनिया में रहते हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं बनेंगे, क्योंकि दुनिया क्या करती है, दुनिया की शेखी, दुनिया की ख्वाहिशें और इंसानी फितरत चाहती है कि हम खुदा के मंसूबे को इनकार करें और अपनी खुद परस्ती के क्या हो जी, पैरोकार बने। ये वो रूहानी जंग है जो हमें हर रोज लड़नी होगी। ये वो रूहानी क्या है जी, बुलाहट है, जिसको पूरा करने के लिए हमें हर रोज दो फैसलों का सामना होगा। और वो क्या होगा, या तो अपनी खुदी का इनकार करना होगा या फिर अपनी खुदी के पैरोकार बनना पड़ेगा। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई बच्चा, बच्ची, खातून, मर्द, बूढ़ा, जवान, कोई भी है, किसी भी मजहब से है, किसी भी खानदान से उसका तल्लक है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और 25वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। अपनी जान खोने से मुराद क्या है, यानी कि जब हम अपनी जिंदगी को खुदा के सुपुर्द कर देते हैं तो हकीकी मायनों में हम उस फहम तक पहुंचते हैं कि यीशु को जिंदगी देना खोना नहीं बल्कि जिंदगी पाना है। और यहां पर यीशु मसीह इस बंदे को यही कह रहा है कि अपनी खुदी का इनकार कर, अपनी उन जिम्मेदारियों को छोड़ और मेरे पीछे हो, क्योंकि वो जिम्मेदारी जो मैं तुझे दे रहा हूं वो क्या है, सब जिम्मेदारियों से आला जिम्मेदारी है। और इसीलिए यीशु मसीह ने यहां पर उससे क्या कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। सोचने पर, अगर हम इस पर सोचें, तो ऐसा लगता है कि यीशु मसीह कह रहा है कि हमें इस दुनिया ही में नहीं बल्कि उन तमाम जिम्मेदारियों से भी इनकार करना होगा। दरअसल जो सीखने का सबक इसमें यह है, जब हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं, जब हम अपने आप को ना करके खुदावंद यीशु मसीह के मंसूबे को यानी कि अपनी सलीब को उठाते हैं, तो दरअसल हम हकीकी जिंदगी को पाते हैं। यहां पर यीशु से बुलाता है लेकिन वो कहता है जी मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे। पुराने अहदनामा में हमें जिक्र मिलता है, जब हम देखते हैं पहला सलातीन, पहले सलातीन में जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है अलीशा का, अलीशा और एलिया के वाक्या में, जब एलिया ने अपनी चादर अलीशा पर फेंकी जो अपने 12 बैलों के साथ खेत में काम कर रहा था, तो खुदा का वहां पर जो अजीब कुदरत वाला काम हुआ है, अलीशा क्या करता है, उसे कहता है एलिया को कि मुझे इजाजत दे ताकि मैं जाकर क्या करूं, अपने माँ बाप को खुदा हाफिज कहूं, बाय बाय कहूं, उनसे रुखसत हूं और मैं तेरे पीछे चलूंगा। एलिया उसे इजाजत देता है कि तू जा, और अलीशा क्या करता है, उन 12 बैलों को जिसने उसे जोते होते हैं, जोत कर काम कर रहा है अपने खेत में, उनको वो क्या करता है जी, उनको वो जिबा करता है और एक बड़ी दावत करता है और अपने माँ बाप से रुखसत होकर किसके पीछे हो लेता है जी, एलिया के पीछे हो लेता है। और एलिया उसे इजाजत देता है, लेकिन यहां पर यसु मसीह इस बंदे को क्या कहता है, इजाजत नहीं देता। यसु मसीह से कहता है लेकिन तू क्या कर, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू मेरे पीछे चल और क्या कर, खुदा की बादशाही की मनादी कर, खुदा की बादशाही की खबर दे। और इतना ही हमें बयान मिलता है और पता नहीं चलता कि इसके बाद उसने उसके पीछे चलने की ख्वाहिश की या वो वापस आया। ये बात हमें अबदियत में जाकर जब यसु मसीह के रूबरू होंगे, आप और मैं पूछ सकते हैं कि यसु मसीह इस दूसरे बंदे के साथ क्या हुआ। लूका ने नहीं लिखा, मत्ती ने नहीं लिखा, तूने इसके बारे में कोई और बात नहीं कही, सिर्फ इतना कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की क्या कर, मनादी कर, खबर फैला। सो आज इस वाक्या में से हम सबके लिए जो सीखने का सबक वो क्या है कि क्या आज कोई रिश्ता, क्या आज कोई दुनियावी बात या कोई और चीज हमें यसु की मनादी करने को रोक तो नहीं रही? हमारी अपनी खुदी हमें यसु मसीह के तरफ जाने से पीछे तो हटा नहीं रही, क्योंकि अगर हम, यसु ने कहा कि जो कोई अपनी जान को खोएगा दरअसल वो क्या करेगा, उसे पाएगा। और इसीलिए मत्ती की इंजील 16 बाप उसकी 26वीं आयत में यसु मसीह ने कहा, अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। सो ये सवाल यसु मसीह करता है कि अगर हम इस सारी दुनिया को हासिल कर लें और अपनी जिंदगी में खुदा के मकसद को पूरा ना करें तो हमें क्या फायदा। क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने क्या किया, खुदा के मकसद को, मर्जी को पूरा करने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। और यसु मसीह ने कहा कि अगर आदमी की जान के बदले वो क्या देगा। आप सबको याद होगा अय्यूब नबी का वाक्या कि शैतान आकर क्या कहता है खुदा से कि अगर तू मुझे इजाजत दे कि मैं उसकी हड्डी को छूं तो वो क्या करेगा, तेरे मुंह पर क्या करेगा, लानत करेगा, वो तुझे बुरा भला कहेगा, क्योंकि इंसान अपनी जान के लिए क्या कुछ नहीं करेगा, सब कुछ करेगा। और शैतान उसे जमाने के लिए क्या करता है, अय्यूब को लेता है और उसके बीवी के अलावा उसके बच्चे, उसका सब कुछ लुटपुट जाता है, लेकिन वो क्या करता है, अय्यूब को आजमाता है, लेकिन अय्यूब क्या करता है, अपनी खुदी का इनकार करता है, अपनी, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, सलीब उठाता है और अपनी जान को बचाने की बजाय खोता है। और दरअसल वो खोने का जो राज क्या है, वो हकीकी जिंदगी को पाता है। इसीलिए यसु मसीह ने कहा है कि चोर नहीं आता चुराने, मार डालने और हलाक करने को, लेकिन मैं इसलिए आया कि हम सब जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। सो आज इस कसरत की जिंदगी को पाने में हमारे सामने कौन सी रुकावट है? क्या नौकरी रुकावट तो नहीं? क्या खामंद ईमानदार नहीं, इसकी वजह से बाइबल पढ़ने या सुनने या गिरजाघर में आने की दुश्वारी है, मुश्किल है, या फिर कोई और चीज, या फिर कोई और ख्वाहिश, या फिर कोई और रिश्ता कि मैं अपने रिश्तेदारों को खुश कर लूं बजाय के खुदा को, या फिर अपनी नींद को पूरा कर लूं या कर लूं बजाय इसके कि मेरी रूह क्या हो जी, खुदा के कलाम से सेर हो। सो बाइबल मुकद्दस हर एक घर में क्या है जी, नक्शे की मानद है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, बाइबल मुकद्दस के बगैर कोई भी जान, ऐसी जान जो ईमानदार बंदे की हो सकती है, वो इस तरह है जैसे समंदर में खोए हुए उस क्या है जी, जहाज की मानद। बाइबल मुकद्दस के बगैर जैसे घर खाली है, वैसे ही रूह क्या है, बियाबान में भटकने वाले उस क्या है जी रत्मा की मानद है जो खुशहाली को देख नहीं सकता। सो इसलिए आज जो हमारे लिए सबक है वो ये है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जब यीशु हमसे कहता है मेरे पीछे चलो, तो कौन सी बात, कौन सी वजह, कौन सा मकसद, कौन सी ख्वाहिश और कौन सी दुनिया की बात हमें रोकती है कि उसके पीछे ना चलें। आएं हम खुदा के जुर झुकें और आज इस दिन में इस बात पर गौर करें कि कौन हमें रोकता है, कौन हमें रोक सकता है। जैसा कि बाइबल में लिखा है कि खुदा की मोहब्बत से हमें कोई चीज जुदा नहीं कर सकती, तो फिर हमें खुदा के पीछे चलने से कौन सी चीज रोकती है। आए हम खुदा के जुर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे हजूर आता हूँ खुदावंद। आज एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बच्चे, एक एक बुजुर्ग के लिए, अपने लिए खुदावंद खुदा मिन्नत करता हूँ कि तेरा पाक रूह हमें इस दुनिया में रहते हुए दुनिया के हम शक्ल ना बने, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और तेरी कामल और पसंदीदा मर्जी को तजर्बे से मालूम करें। सबको छू, बड़ी बरकत दे और आज का कलाम हम सब के लिए राहे नसीहत, राहे खुदाम खुदा हौसला और खुदाम राहे चिराग हो, ताकि हम इस दुनिया में रहें लेकिन दुनिया के बनकर नहीं, दुनिया में रहें लेकिन दुनिया को अंबरें अंदर ना बसने दे, क्योंकि हम सब इस जमीन पर मुसाफर और हमारा असली वतन तूने कहा है आसमान है। हम सबको कुव्वत दे ताकि तेरे बुलावे के मुताबिक जिंदगी बसर करें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।